कि भाई 14 पूर्व है, 11 अंग और 14 पूर्व, तो वो हो गए पूरे के पूरे द्वादशांग के पाठी, तो उसमें सब आ जाता है फिर। तो वो पूर्व 14 कौन से हैं? उत्पाद, आग्रायणी, वीर्यानुप्रवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, मात्र आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुप्रवाद, कल्याण अनुवाद, प्राणावाय प्रवाद, क्रिया विशाल और लोक बिंदु। ये सब इनके प्रमाण दिए हैं विशेष रूप से, इनमें क्या क्या विषय आया है वो सब बहुत डिटेल चर्चा है, तो वो तो अपन यहाँ पर अभी नहीं कर पाएंगे। अब अंगवाही भी शेष बचा, ये तो अंग प्रविष्ट की चर्चा हुई, दो वेद कहे थे अंग प्रविष्ट और अंगवाही। अंगवाही के साथ क्या है, अंग ज्ञान के ही आधार पर, नंबर वन अल्प ज्ञान, अल्प बल और अल्प शक्ति वाले शिष्यों के उपकार के लिए गणधर और अन्य परंपरा आचार्यों के द्वारा जो ग्रंथों की रचना की जाती है वह सब अंगवाह्य कहलाता है। अंग ज्ञान के आधार पर अल्प बुद्धि, अल्प बल और अल्प आयु वाले शिष्यों के उपकार के लिए जो गणधर या अन्य आचार्यों के द्वारा ग्रंथों को कंपाइल किया जाता वो सब अंगवाही कहलाते हैं। अंगवाही के भेद 12 हैं। तो देखो स्पष्ट हो गया, पहले कहा कि दो प्रकार का श्रुत ज्ञान है, तो दो भेद कौन कौन से हुए, अंग प्रविष्ट और अंगवाही। अब उसमें से जो अंग प्रविष्ट है उसके तो अनेक भेद हैं, और नहीं उसमें से जो अंगवाही है उसके अनेक भेद हैं, और जो अंग प्रविष्ट है उसके 12 भेद हैं। तो अपन ने 12 भेद अंग प्रविष्ट के पढ़े, और अनेक भेद हैं, उन अनेक में से यहाँ पर कुछ थोड़े से जिन्होंने दिए नहीं अंगवाही के, पर अंगवाही के 14 भेद बहुत प्रसिद्ध हैं और वो मिलते हैं उसमें। ये जो 10 वैकालिक इत्यादि हैं वो सब आते हैं। आज वर्तमान में जितने भी ग्रंथ उपलब्ध हैं वो सब जो है अंगवाही ही कहलाएंगे। सामायिक है, जिसमें सामायिक के बारे में विशेष चर्चा करी है, स्तवन के बारे में, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनायिक, ये कृतिकर्म, ये कृतिकर्म तो आज ही मिलता है जिसमें कि मुनि महाराज को सुबह से शाम तक क्या क्या करना चाहिए वो सब कृतिकर्म में है। दस वैकालिक में जैसे 10 अध्याय है तत्वार सूत्र में वैसा ही है। उत्तराध्यन में जितने भी श्रावकाचार हैं वो सब उत्तराध्यन के अंतर्गत ही आ गए। कल्प व्यवहार, जिसमें मुनि महाराजों को क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में चर्चा है, तो कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, ये सब मुनि महाराज के मूलाचार जिसको अपन कहे वैसा आ गया। पुंडरीक, महापुंडरीक, इनमें सब जो है विशेष महापुरुषों के बारे में चर्चा करी है, तो ये सब अंगवाह्य कहलाएंगे। तो इस तरह से अंग प्रविष्ट और अंगवाह्य रूप में दो प्रकार से यह श्रुत ज्ञान कहा गया, इसे ही अपन आगम ज्ञान भी कहते हैं। अब जो है श्रुत ज्ञान का चैप्टर पूरा हो गया, इतने ही एक ही सूत्र में श्रुत ज्ञान पूरा हुआ। अब कह रहे हैं अवधि ज्ञान, तो भाव प्रत्ययो वधिर देव नार का नाम। अवधि ज्ञान किसको होता है? भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देव और नार की जीवों को होता है। भाव प्रत्यय के मायने क्या है? भाव ही जिसमें निमित्त है, या वह पर्याय ही जिसके होने में निमित्त है, कारण बन रहा है। वहां पर देव और नार की जीवों को और उस जन्म होते ही अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसलिए वह अवधि ज्ञान उनका भाव प्रत्यय है। उसमें और कोई कारण नहीं है क्या? कहते है, क्षयोपशम के बिना तो होगा नहीं। अवधि ज्ञान वर्ण कर्म के क्षयोपशम से ही अवधि ज्ञान हुआ है, लेकिन वह उस भाव में जाते ही बिना किसी प्रयत्न के उत्पन्न हो जाता है। तो कहते प्रयत्न कौन सा करना पड़ता है? कहते वैसे और जीवों के लिए तो व्रत नियम संयम इत्यादि होने पर ही अवधि ज्ञान होता है, लेकिन वहां पर व्रत नियम इत्यादि के अभाव में ही, क्योंकि उस भाव में आप आए हैं इसलिए आपको अवधि ज्ञान मिलेगा। जैसे कि हमें आकाश में उड़ना हो तो प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन पक्षी को तो जन्म से ही उड़ने की सामर्थ्य उस भाव में प्राप्ति हुई है। ठीक इसी तरह से यह अवधि ज्ञान देव और नारी की जीवों को सहज रूप से वहां उत्पन्न होते ही प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे भाव प्रत्यय कहते हैं। और शयोपसम निमित्ता षड विकल्पा शेषा नाम, दूसरा जो शयोपसम से होने वाला है जिसको गुण प्रत्यय कहते हैं, ये तो हुआ भाव प्रत्यय। दूसरा गुण प्रत्यय कहो या कि शयोपसम निमित्तक कहो, तो वह होता है किसी विशेष की अपेक्षा ना रख करके, भाव विशेष की अपेक्षा नहीं है वहां, तो सिर्फ ज्ञानावरणी कर्म के शयोपसम से जो उत्पन्न हो जाता है उसे गुण प्रत्यय कहते हैं। और या कि ये कहें कि जिसमें ब्रह्म इत्यादि गुणों के होने पर ही सम्यक दर्शन भी अनिवार्य है, अवधिज्ञान में तो दोनों ही, सभी देव नार की जीवों को अवधिज्ञान होता हो ऐसा नहीं समझना, अवधिज्ञान तो सम्यक दर्शन के साथ ही होगा। तो जो देवनार की सम्यक दृष्टि उनको अवधिज्ञान होगा, और जो देवनार की मिथ्या दृष्टि उनको वही विभंग ज्ञान कहलाएगा, ये ध्यान रखना। कुअवधि हाँ, तो अवधि ज्ञान कहा ना कि सब अपन सामान्य रूप से क्या कह देते हैं, सभी देव नारकियों को अवधि ज्ञान होता है, इसका मतलब सब सम्यक दृष्टि हैं क्या? क्योंकि अवधि ज्ञान कहा तो सम्यक दर्शन के साथ ही होगा, तो सबके लिए नहीं, जो सम्यक दृष्टि है देव नारकी उनके लिए अवधि ज्ञान होता है, और जो मिथ्या दृष्टि देव नारकी है उनके लिए कुअवधि ज्ञान होता है, इस तरह से। और जो शयोपसम निमित्तक है या कि गुण प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान है, वो तो किसको होता है? वो मनुष्य और तिरंज के लिए। वो कैसे होता? कहते सम्यक दर्शन व्रत नियम इत्यादि गुणों के होने पर जो अवधि ज्ञान प्रकट होता उसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते। वह गुण प्रत्यय भी जो दो माने सम्यक दर्शन के साथ भी होगा और मिथ्यात् के साथ। पर एक चीज ध्यान में रखें अपन कि सबसे पहले तो किसी को भी होगा तो सम्यक दर्शन के साथ ही अवधि ज्ञान उत्पन्न होगा, बाद में सम्यक दर्शन छूट जाने पर वह विभंग ज्ञान कहलाएगा। लेकिन मनुष्य तिरंज को विभंग ज्ञान उत्पन्न हो जाए मिथ्या दृष्टि को, ऐसा कहीं भी पढ़ने सुनने में नहीं आया। सम्यक दर्शन और व्रत नियम होने पर ही पहले अवधि ज्ञान होगा, बाद में सम्यक दर्शन छूट जाने पर वही विभंग ज्ञान कहलाएगा। लेकिन वहां देवनारकी में तो जन्म से ही विभंग ज्ञान हो सकता है, यहाँ जन्म से ही विभंग ज्ञान नहीं होगा। यहाँ तो पहले अवधि ज्ञान प्राप्त करो, फिर बाद में अगर छूट जाए तो
वहाँ पर कुछ न कुछ होना जरूरी है देवनारकी में, तो भंग होगा या अवधि होगा।
हाँ यहाँ पर तो हाँ, क्योंकि वहाँ तो भाव ही कारण है और यहाँ तो गुण कारण है। जब आपके पास कोई गुण होंगे सम्यक दर्शन व्रत नियम होंगे तब आपको अवधि ज्ञान होगा, फिर बाद में अगर आप भी गुणों को छोड़ देंगे तो फिर आपको वही विभंग ज्ञान कहलाने।
कभी ऐसा भी होता है अवधि ज्ञान
गायब भी हो जाता है
एक बार अवधि ज्ञान,
हाँ उसके बाद समाप्त हो जाएगा, उसी भाव में समाप्त हो जाएगा, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर समाप्त हो जाएगा।
पंचम काल में अवधि ज्ञान हो जाएगा,
हाँ हो सकता है पंचम काल में भी मुनियों को हो सकता है, वो भी 1000 वर्ष के पीछे एक मुनि महाराज को होगा एक ऐसा उल्लेख मिलता, और एक मिलता है कि नहीं भाई जब आखिरी में मुनि महाराज होंगे अंतिम उनके लिए होगा, 21000 वर्ष में एक ही मुनि महाराज को होगा, और या फिर 1000 वर्ष के बाद होगा तो 21 मुनि महाराज को होगा पूरे पंचम काल में, ऐसा उल्लेख दो तरह का मिलता है अवधि ज्ञान को लेकर के। तो इस तरह ये अवधि ज्ञान की चर्चा हुई, उसमें कह रहे हैं कि अवधि ज्ञान जो शयोपसम निमित्तक है वो 6 प्रकार का होता है। 6 कौन कौन से है? तो कहते अनुगामी अननुगामी वर्तमान यमान अवस्थित और अनवस्थित। वर्तमान वो है जो कि सूर्य के प्रकाश की तरह जीव के साथ साथ में जाता है। अब वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में साथ में जावे तो क्षेत्रानुगामी कहलाएगा, एक भाव से दूसरे भाव में साथ में जावे तो भवानुगामी कहलाएगा, और क्षेत्र में भी जावे भाव में भी जावे तो उभयानुगामी कहलाएगा। दोनों में दोनों प्रकार की है। और अननुगामी क्या है? जो अवधि ज्ञान साथ में नहीं जाता वो अननुगामी कहलाता है। इस क्षेत्र में बैठे हैं यहाँ तो हो गया, अन्यत्र दूसरे क्षेत्र में 10 किलोमीटर दूर गए अवधि ज्ञान गायब, इस तरह से। तो ये अननुगामी नाम का, हाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने पर जो साथ में नहीं जाता, एक भाव से दूसरे भाव जाने में जो साथ में नहीं जाता और दोनों में ही साथ में नहीं जाता तो वो सब अननुगामी कहलाएगा। जो शुक्ल पक्ष में जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती चली जाती हैं ऐसा ही होने के बाद जो निरंतर विशुद्धि से बढ़ता चला जाता है वो वर्धमान नाम का अवधि ज्ञान कहलाएगा। और जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती जाती ऐसे ही जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद धीरे 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 घटता चला जाता वो हीयमान अवधि ज्ञान कहलाएगा। और जो जैसा हुआ था वैसा ही रहा वे न घटे न बढ़े वो कहलाता अवस्थित। और अनवस्थित जो जल में तरंगें उठती हैं मिटती हैं उठती हैं मिटती हैं ऐसा ही अवधि ज्ञान है, जो होता है नष्ट हो जाता फिर हो जाता फिर, तो ये कहलाएगा अनवस्थित। कांस्टेंट नहीं है, घटता बढ़ता सब प्रकार से होता लेता है। इस तरह से अवधि ज्ञान के 6 वेद कहे। अवधि ज्ञान के 3 वेद भी कई ग्रंथों में लिखे हुए हैं, जिसमें देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। ये जो परमावधि और सर्वावधि है वो तो चरम शरीरी जीव के ही होंगे, जिसको उसी भाव से मोक्ष होना है उसे ही परमावधि और सर्वावधि होगा। ये परमावधि सर्वावधि केवल ज्ञान लेके ही समाप्त होता है। हाँ, मतलब इसको धारण करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त करेगा और मुक्त हो जाएगा। देशावधि जो है वो सामान्य चारों गतियों के जीवों को हो सकता है, चारों गतियों के जीवों को, तिरंज को भी, देव नारकी मनुष्य को भी, सबके लिए हो सकता है। लेकिन यह परमावधि सर्वावधि तो मनुष्य को ही होगा, मनुष्य में भी सब मनुष्यों को नहीं होगा, जो चरम शरीरी है उन्हीं को होगा। इस तरह से अवधि ज्ञान की चर्चा पूरी हुई। फिर कह रहे हैं विजु विपुलमति मना पर्याय, विजुमति और विपुलमति ऐसे मना पर्याय दो प्रकार का होता है। विजु का मतलब होता सरल, मन वचन काय की जिसकी सरल चेष्टा है उसके मन की बात को जान लेना वह कहलाएगा विजुमति। जो सरल मन वचन काय की बात को जान लेते हैं, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, ऐसी स्थिति जिसकी है उसकी मन की बात तो जान लेंगे। और आप हाव भाव कुछ और कर रहे हैं, आपका मन में कुछ और है, आप वचन से कुछ और बोल रहे हैं, तो ऋजुमति वाले मुनि महाराज नहीं जान पाएंगे कि आपका क्या सोचना है। हाँ, और विपुलमति वाले ज्ञान वाले होंगे अगर महाराज, तो आप चाहे कुटिल मन वाले हो चाहे सरल मन वाले हो, आपने अभी सोचा हो या आधा सोचा हो, आगे आप सोचेंगे, कैसी भी स्थिति हो वे आपके मन में स्थित सारी बातों को जान लेंगे, वो विपुलमति कहलाते हैं। इस तरह ये ऋजुमति विपुलमति मनःपर्याय ज्ञान दो प्रकार का मनःपर्याय ज्ञान होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है और अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान में अंतर क्या है, इन दोनों में विशेषता क्या है, इसकी भी थोड़ी चर्चा 3 सूत्रों में कर रहे हैं। विशुद्ध प्रतिपाद्याभ्याम तद विशेष, तद विशेष अर्थात ऋजुमति और विपुलमति इन दोनों में क्या विशेषता है, तो कहते विशुद्धि और अप्रतिपाद ये दो चीजों की अपेक्षा से विशेषता है। विजुमति से ज्यादा परिणामों की विशुद्धि विपुलमति वाले के है। विशुद्धि देखी जाए, विशुद्धि का मतलब समझते, कषायों की मंदता का नाम विशुद्धि और कषाय की तीव्रता का नाम संक्लेश। ये बिल्कुल मैंने अपने यहाँ पर अलग ही शब्द है, विशुद्धि बढ़ाओ मतलब कषाय मंद करो, संक्लेश मत करो यानी तीव्र कषाय मत करो, तो विशुद्धि और संक्लेश। विशुद्धि जिसकी ज्यादा है उसे ही विपुलमति होगा। तो विशुद्धि की अपेक्षा से देखा जाए तो ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति की विशुद्धि ज्यादा है, और ऋजुमति तो होने के बाद छूट भी सकता है, लेकिन विपुलमति ज्ञान होने के बाद केवल ज्ञान तक छूटेगा नहीं, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक नहीं छूटेगा। इस तरह से अब इसमें एक चीज, हाँ बस यही ठीक है इसमें दोनों के में तो यही। फिर जब अवधि, अब आगे जो है, अच्छा लेकिन ये होता क्यों है ऐसा, तो कहते कि मनःपर्याय ज्ञानावरण के क्षयोपशम की मंदता और अधिकता के द्वारा होता है। ऋजुमति मंदता का परिणाम और विशेष क्षयोपशम होगा तो विपुलमति ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान क्षयोपशम पर निर्भर करता है। मनःपर्याय ज्ञानावरण का ज्यादा क्षयोपशम है तो विपुलमति विशेष क्षयोपशम है, विशुद्धि है, और कम क्षयोपशम है तो ऋजुमति होकर के छूट भी जाता है।
अब
वो तो केवल ज्ञान हुआ मतलब सब सभी वो सब उसमें ही हो गया। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मना पर्ययो, अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान में इन 4 बातों की अपेक्षा से विशेषता है। कौन कौन सी 4 बातें, विशुद्धि नंबर 1, अवधि ज्ञानी की अपेक्षा मनःपर्याय ज्ञानी की विशुद्धि अधिक है, बहुत अधिक है। क्षेत्र की अपेक्षा से देखें तो मनःपर्याय ज्ञानी का क्षेत्र तो सिर्फ 2.5 दीप है, लेकिन अवधि ज्ञानी का क्षेत्र तो 3 लोक है। हाँ ये ध्यान रखना, ये बड़ा उल्टा जैसा मालूम पड़ेगा, कह रहे इनका क्षेत्र ज्यादा होना चाहिए, कहते नहीं, लेकिन मनःपर्याय ज्ञानी को काम ज्यादा करना, इनको तो क्या करना, रूपी पदार्थ को जो है सहज रूप से जान लेंगे, लेकिन जो मनःपर्याय ज्ञानी है उनका विषय तो, उनका विषय तो अनंतमा भाग बनेगा, जितना की अवधि ज्ञानी जानते उसके अनंत में भाग को जान लेंगे, इसलिए उनके विषय की सूक्ष्मता है। विषय देखो, स्थूलता से आप बहुत सारी चीजें जान लो और सूक्ष्मता से थोड़ी जानो तो भी विशेष कहलाएंगे आप। आपने 10 शास्त्र पढ़े हैं, 10 शास्त्रों का ज्ञान है और किसी को 10 शास्त्रों में जो मर्म है उसका ज्ञान है तो वो ज्यादा ज्ञानवान कहलाएगा। आपको तो सतही ज्ञान है, इनको तो डेप्थ में जाकर के ज्ञान है। ये डिफरेंस है, भले ही आपका माने क्वालिटी स्पेशल है, क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ज्यादा जानते कि कम जानते। हाँ, ये इस तरह की भी
सब्जेक्ट में
एक पीएच तो विशेष उनको उसका है। इसलिए क्षेत्र भले ही कम है, ढाई दीप। क्यों ढाई दीप है? क्योंकि मनुष्य ढाई दीप से बाहर जाएंगे नहीं और ढाई दीप में ही मनुष्य या मन वाले जीव के मन में स्थित बात को जान पाएंगे। इसलिए जो है विशेष रूप से मना पर है ज्ञान। अच्छा, और दूसरी, ये तो विषय की अपेक्षा अपन ने कह दिया, लेकिन देखा जाए ये ज्यादा पावरफुल नहीं है लॉजिक। मेन लॉजिक क्या है कि ढाई दीप में क्या होता मना पर है ज्ञान, उससे बाहर के विषय को कौन ही जानता। तो कहते कि मुनि महाराज को ही होगा और मुनि महाराज तो ढाई दीप से बाहर जाएंगे नहीं, इसलिए उनको वह विषय बनेगा भी इस तरह से। और वैसे अवधि ज्ञानी तो नार की साथ में नरक, नरक में भी नार की अवधि ज्ञान है और वहां पर स्वर्ग में ऊपर सर्वार्थ सिद्धि वाले को भी अवधि ज्ञान है, तो सारे लोक में अवधि ज्ञान लगा सकते हो। स्वामी की अपेक्षा से देखा जाए तो अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गतियों के जीव हैं और इसमें स्वामी कौन रहेगा? मनुष्य ही रहेगा। मनुष्य में भी जो है मुनि महाराज रहेंगे और मुनि महाराज में भी 8वें से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के मुनि महाराज रहेंगे, सब नहीं रहेंगे। उसमें भी जो प्रवर्धमान चारित्र वाले मुनि महाराज हैं उन्हीं को होगा, प्रवर्धमान चारित्र वाले मुनि महाराज में सबको नहीं होगा। जिनके साथ रिद्धियों में से कोई एक रिद्धि प्राप्त हो गई होगी उनके ही होगा मना पड़ेगा ज्ञान। तो एक चीज की मना पड़ेगा ज्ञान मनुष्य गति में होगा, मनुष्य गति में सब मनुष्यों को नहीं होगा, महाव्रतियों को होगा, महाव्रतियों में सब महाव्रतियों को नहीं होगा। जो 8वें गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान के मुनि महाराज हैं उनको होगा, कहते उनको उनमें भी सबको नहीं होगा। जो वर्धमान चारित्र वाले हैं उनको ही होगा, वर्धमान चारित्र वाले में भी सबको नहीं होगा, विद्धिधारी होंगे तो ही होगा। ऐसी 5 विशेषताएं हैं मनय पर ज्ञान की, तब ये विशेष रूप से होता है। विषय की अपेक्षा से देखा जाए तो विषय तो जो है अवधि ज्ञान का जितना विषय है उसके भी अनंत में भाग को जान लेता है मनः परे ज्ञानी। अवधि ज्ञान का विषय क्या है? अवधि ज्ञान का विषय तो परमाणु है जो सबसे सर्वावधि है उसका, उसके भी अनंत में भाग को। तो फिर प्रश्न उठ जाएगा कि क्या परमाणु का भी अनंत में भाग होता है? ये कथन की अपेक्षा से है। अवधि ज्ञान तो पुद्गल वर्गणाओं को जान लेगा, हमारे अंतरंग में बधे हुए कर्म वर्गणाओं को जानेगा, लेकिन उनके भी अनंत में भाग को और मन पर यानी जान लेंगे। अब एक चीज और है इसमें कि सबका अलग अलग विषय स्वयं ही इसको बंद कर देंगे। तो एक तरफ से कहेंगे अब इनके विषय की अपेक्षा से तो थोड़ी सी चर्चा कर ली एक सूत्र में, पर अब अलग से 3 सूत्रों में विषय की ही चर्चा कर रहे हैं कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का क्या विषय बनेगा, अवधि ज्ञान का क्या बनेगा और मन पर ज्ञान का और केवल ज्ञान का क्या विषय बनेगा। ऐसे सब 5 ज्ञानों के अब विषय की चर्चा कर रहे हैं। अभी क्या किया, 2 ज्ञानों में क्या अंतर है, मन पर ज्ञान के 2 भेदों में क्या अंतर है, एक सूत्र में क्या बता दिया अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान में क्या विशेषता है। अब कह रहे हैं 4 सूत्रों में कि इन 5 प्रकार के ज्ञानों के विषय क्या हैं, ये किसको अपना वो बनाते हैं, विषय बनाते हैं जानने का, किस ये कौन बनता है इनका, ये की अपेक्षा से कह रहे हैं। मति श्रुत योर निबंधो द्रव्येश्व असर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय जो है वो कैसा है, सब पर्याय नहीं है, असर्व पर्यायेषु, कुछ पर्याय हैं लेकिन द्रव्य सब है। तो सब द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानता है कौन, मन मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। अपन सब द्रव्य तो जानते, 6 द्रव्य, लेकिन सब द्रव्यों की सब बातें थोड़ी जानते हैं, थोड़ी सी बातें जानते हैं। यह मति ज्ञान इंद्री मन की सहायता से उत्पन्न होने वाला यह रूपी अरूपी सब द्रव्यों को जानता है, लेकिन उन सब की सब पर्यायों को नहीं जानता है। रूप ही स्वबद्ध है, लेकिन अवधि ज्ञान तो सिर्फ रूपी पदार्थ को ही जानता, सब द्रव्यों को नहीं जानता, रूपी पदार्थों को विषय करता है। और तदनंत भागे मना परे अस्य, मन परे ज्ञान भी रूपी पदार्थ को ही जानेगा, लेकिन अवधि ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ के भी अनंत में भाग को वह जान लेगा। सर्वावधि जिस रूपी द्रव को जानता है उससे बहुत सूक्ष्म द्रव को मन परे ज्ञान जान लेता है। नहीं परमाणु के नहीं, स्कंद के करे भैया, नहीं तो परमाणु के तो होंगे नहीं, फिर परमाणु के हो जाएंगे तो परमाणु क्या रहा है, परमाणु तो अविभागी है। इस तरह से जो है मन परे ज्ञान का विषय भी हो गया। एक और बचा कि सर्वद्रव पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञान का क्या विषय है, सर्वद्रव और उनकी समस्त पर्यायें, यह केवल ज्ञान का विषय है। ये चार ज्ञान में कितने ज्ञान एक साथ हो सकते जीव को, अब ये प्रश्न हुआ कि कितने हो सकते, तो एक सूत्र ही बना दिया, एक आदिनी आज्ञानी युगपद एक अस्मिन्ना चतुर्भ्या, एक जीव में एक साथ, एक अस्मिन एक आदिनी, एक को आदि लेकर के आ चतुर्भ्या चार ज्ञान तक भाज्यानी हो सकते हैं, हो ही ऐसा नहीं कह रहे, हो सकते हैं भाज्यानी मतलब हो सकते, मे बी मे नॉट बी, ऐसा कौन कौन से होंगे, एक से लेकर के अगर एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान, एक ज्ञान तो कोई और नहीं होता, एक ज्ञान जब भी होगा तो केवल ज्ञान, दो होंगे तो मध्य ज्ञान श्रुत ज्ञान, तीन होंगे तो मध्य ज्ञान श्रुत ज्ञान, या मध्य ज्ञान श्रुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान, या मध्य ज्ञान श्रुत ज्ञान और मन परे ज्ञान, और चार होंगे तो मति श्रुत अवधि और मन परे ज्ञान, ये इस तरह से अधिकतम चार ज्ञान हो सकते हैं। और पांच ज्ञानों में से तीन ज्ञान ऐसे हैं जो मिथ्यात्व के उदय में और विपरीतता को प्राप्त हो जाते हैं, बाकी ज्ञान मिथ्या दृष्टि के होते ही नहीं है, मन परे ज्ञान तो होगा ही नहीं, केवल ज्ञान भी नहीं होगा। तीन ज्ञान ऐसे हैं, मत ज्ञान श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, जो मिथ्यात्व के साथ भी रह सकते हैं, इसलिए उनकी चर्चा कर रहे हैं। मति श्रुता अवधियो विपर्यश्च, मति श्रुत और अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान विपर्य यानी विपरीतता को भी प्राप्त हो जाते हैं, ये तीन अज्ञान भी कहलाते हैं। मत्यज्ञान श्रुताज्ञान और विभंग ज्ञान, हाँ उसी को कुमति कुश्रुत और विभंग ज्ञान कहते हैं, कुअवधि भी कह सकते हैं, सब में कुश लगा दें तो कुमति कुश्रुत और कुअवधि, और या कि मत्यज्ञान श्रुताज्ञान और विभंग ज्ञान, ऐसे तीन नाम भी उसके दे सकते हैं। ये विपरीतता का मतलब क्या है, तो कहते हैं जैसे कि कड़वी तुमड़ी में दूध रख दो तो वो कड़वा हो जाएगा, ठीक इसी तरह से मिथ्या दृष्टि है उसके भीतर ये ज्ञान रहेंगे तो वे विपरीतता को प्राप्त हो जाएंगे। ज्ञान का काम क्या है, प्रयोजन भूत तत्व को जानना, ज्ञान का काम ये नहीं है कि जे कागज है कि जे किताब है कि जे जानना, ये तो सब जानते हैं, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि सब समान रूप से जानते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, कि वास्तव में जो आत्म तत्व है उसे जानना ही ज्ञान है, वही ज्ञान समीचीन है जिसमें हम आत्म तत्व को जानते हैं, वही सब में ज्ञान कहलाएगा। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान जब आत्म तत्व प्रयोजन भूत तत्व को जाने तो फिर वे सम्यक ज्ञान कहलाए, और वे जब आत्म तत्व को नहीं जानते तो वे ही मिथ्या ज्ञान कहलाने लगते हैं, उन्हीं को अज्ञान भी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, कि सद सतोर विशेषाद्य दृक्षोपलब्धे रुणमत्वत्, इसके लिए उदाहरण दिया सूत्र में, ये सिर्फ उदाहरण है एक, सत असत योग है, जो सत और असत पदार्थ हैं, अर्थात विद्यमान पदार्थ हैं और अविद्यमान पदार्थ हैं, सत मतलब विद्यमान और असत मतलब अविद्यमान पदार्थ हैं, उनमें अविशेषा कोई विशेषता नहीं करते हुए उन्मत्वत यथा उपलब्धि अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे कोई नशे में वाला व्यक्ति चीज को होते हुए भी नहीं है और नहीं होते हुए भी है ऐसा कह देता है, ऐसा ही यह मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। मिथ्या ज्ञान क्यों कहलाता है, तो कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पागल होवे तो वो जो चीज नहीं है उसे वैसा कह देगा, जो है उससे कुछ और कह देगा, उसका कोई भरोसा नहीं। कभी जो है नशे में माँ को माँ भी कह देता है, कभी माँ को बहन कह देता है, कभी बहन को माँ कह देता है। तो इसका मतलब है जो विद्यमान है उसका उसे ज्ञान नहीं, जो अविद्यमान है उसका भी उसे ज्ञान नहीं है। सत असत के बीच में उसे कोई भेद नहीं है, इसलिए उसका यह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। इतना ही इसके बारे में दिया हुआ है। अब एक जो है सूत्र, अब ये ज्ञान की चर्चा तो पूरी हो गई, सम्यक ज्ञान की। अब जो मैंने प्रमाण की चर्चा हो गई, अब जो है एक सूत्र में नए की चर्चा करेंगे, वो अपन अभी नहीं करें, नहीं तो फिर गड्ढमट हो जाएगा। अभी तो जो है एक बार अपन पूरा ये विचार कर लें कि हमने प्रारंभ में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही मोक्ष का मार्ग है, तत्वार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, वह दो प्रकार से होता है, और सात तत्व कौन से हैं, और सात तत्व और सम्यक दर्शन इत्यादि को जानने के उपाय कितने सूत्रों में कहे हैं, फिर वह जो प्रमाण है वह पांच प्रकार का है, मति श्रोतावधि मना परे केवल ज्ञान, उसमें से भी दो परोक्ष होते हैं, तीन प्रत्यक्ष होते हैं। परोक्ष में मति ज्ञान अवधि ज्ञान है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, और प्रत्यक्ष में अवधि मना परे और केवल ज्ञान है, और इन्हीं की चर्चा अपन ने विस्तार से अभी इसमें करी। अब जो है नयों की चर्चा
पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्या में दश्रुतम पंच पदम नमामि हरिगंतवासी अतम गणवर देवी निगंतियम संबम प्रणमामि गुप्त युद्धो सुदना नमोवयम सिरसा निशाय वल्के सुद भक्ति कौसुको को तसालुचि अंगु अंगु पहिने पाहु निब्रह्म सुत परिमाणे उपभोगे चूलिया सेव सुत तय चूलम कायम सानिच कलम चे पुरी में दाउन में सामी दुख को कम को महिलाओ सुगे समय सुपरमत विभावना पटुमती सुचरित तपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या छत्तीस गुण समग्रे पंचभ्याचार करण संदर्शे शिष्यानुभे कुशले धम्मायरे सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन या तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्म मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माग्निता सपोदन कला साधु प्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रकरणा चंद्रार्क तेजोधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन वटा पीनन्तु मां साधुवा गुरुवा पांचनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चार कारणों गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का विषायवंती आयु मुक्ति का उस सुखों को तो सालोजिम समलान समुन्नसु समचरितानु पंचव्याचरण मायरियानु आयराधि सुन्दरानु उपदेशानु उच्चारणु तिरुमुन पालन रयानु सुसाउनु सैनिच कारु पंचे पुजे मंदाउनु सामी दुखों को कम को इलाव सुदेहुं समय मंदल संपत्ति सम मोक्ष मार्ग से नेतारं एतारं कर्म पूर्णतां ज्ञातारं विश्व सत्वानां मंदिर महावीर भगवान की आचार्य उमा स्वामी महाराज की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की
सवेरे बताया था तो मन परे ज्ञान की सीमा के बारे में थोड़ा सा कि जो मन परे ज्ञानी मुनि महाराज हैं उनका सीमा ढाई दीप पतल की, तो ढाई दीप में वो स्थित हैं वो तो ठीक है, लेकिन ढाई दीप के बाहर जो देव और नारकी लोग हैं क्या उनके मन की बात भी वो जान सकेंगे?
नहीं जान सकते। ढाई दीप के बाहर स्थित मनुष्य भी क्यों ना हो, मनुष्य तो हो ही नहीं सकता, पर जो देव और नारकी हैं या और भी जो जीव हैं उनके विधाई दीप के बाहर उनका क्षेत्र है ही नहीं।
अच्छा, और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए चतुर्थ काल में जैसे देवगण जो है वो ढाई दीप में आते हैं तो वो अगर आ जाएं तो क्या उनके मन की बात जान सकेंगे?
ऐसा कहीं कोई निषेध तो मिलता है?
पहले जो मुझे आपने पढ़ाया था उसमें ये बात बताई गई थी ढाई दिन में स्थित मनुष्यों के मन की बात जानते हैं, तो क्या
तिरंचों के मन की भी जानते हैं?
पर देव और नारकियों के बारे में?
नारकी तो ढाई दिन में आएंगे नहीं, गए देव, तो देव के मन की बात भी जान लेंगे। उसमें क्या, जिसके मन है उसके मन की बात जान लेंगे। मन का आलम्बन लेना है उनके लिए, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई औदारिक या वैक्रियक शरीर की बाधा आ रही हो, वहाँ तो मन की बात है।
तो जैसे तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में है, तो वो तीर्थंकर के मन तो है उनको?
तीर्थंकर के द्रव्य मन नहीं, द्रव्य मन तो है लेकिन वे उसका उपयोग नहीं करते हैं। जैसे द्रव्य इंद्रियां हैं पर वे उनका उपयोग नहीं करते।
वो तो मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ कि वो जो अवधज्ञानी मुनि महाराज हैं, तो वो क्या ये जान लेंगे कि तीर्थंकर भगवान क्या सोच रहे हैं, क्या केवली भगवान क्या सोच रहे हैं, दूसरे केवली भगवान नहीं करते?
अरे भैया, वे मन का उपयोग ही नहीं करते अपने कुछ जानने के लिए। वे चिंतन करने के लिए मन का उपयोग करें तो उनका,
इसका मतलब ये होगा कि जब मन होते हुए भी जब तक मन का उपयोग नहीं होगा तब तक वो मन में कुछ विचार तो चलते रहेंगे महाराज जी?
संकल्प विकल्प के जाल का नाम मन है। हे उपाधेय का विवेक करे वो मन है, शिक्षा आलाप उपदेश ग्रहण करे वो मन है। इस तरह की तीनों परिभाषाएं केवली भगवान पर लागू नहीं होंगी। इस वजह से केवली भगवान के मन में विचार इत्यादि की कोई चर्चा नहीं है, निर्विचार हो गए वो। वे सकल चराचर उनके ज्ञान में झलक रहा है, उन्हें जानने के लिए कोई उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है। तो मन पर ज्ञानी भगवान के मन की बात क्या जानेंगे? भगवान उनके नहीं, जाति स्मरण तो शुद्ध ज्ञान का ही भेद नहीं, स्मृति है भाई। जाति स्मरण स्मृति है, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध नरतांतरम, यह मति ज्ञान के ही भेद प्रभेद है। विशेष रूप से जानेंगे तो वह शुद्ध ज्ञान कहलाए। इसलिए जाति स्मरण भी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत ही आएगा, उसका मति ज्ञान। इस तरह से अपन ने प्रमाण या कि सम्यक ज्ञान के बारे में सारी बात जान ली। अब जो है नए के